शिवसेना की बदसलूकी के बावजूद पाकिस्तानी किताब की मुंबई में रूनमाई। पाकिस्तान में रेडियो को सनत का दर्जा देने पर गौर। तुर्की में अमन रैली के हमलावरों की जल्द शनाख्त का हुकूमती दावा। और काबुल टैक्सी नामी फेसबुक पेज एक दर्दे सर। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। भारत में सख्त गिर हिंदू जमात शिवसेना की जानिब से पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब की रूनमाई की मुखालफत के बावजूद मुंबई के नेहरू स्टेडियम में अब से कुछ देर पहले इस किताब की रूनमाई कर दी गई है। ये किताब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक है। तकरीब से खिताब करते हुए किताब के मुसन्निफ खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा है कि इसे लिखने का मकसद कुछ गलत फहमियों को दूर करना है। शिवसेना ने इससे पहले रूनमाई की इस तकरीब को मुनक़द करने वाले मुंतजिम से बदसलूकी की थी। तफसील बताएंगे ज़हीरुद्दीन बाबर।
शिवसेना के कारकुनों ने किताब की रुनमाई के लिए मुंबई में प्रोग्राम मुनाकिद करने वाले इदारे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सरबराह सुंधेंदर कुलकर्णी को उनकी कार से उतारकर उनके चेहरे पर स्याह रंग मल दिया। इस वाक़े के बाद मिस्टर कुलकर्णी और महमूद कसूरी ने मुंबई में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका शाम का प्रोग्राम तयशुदा वक्त के मुताबिक होगा। सुंधेंदर कुलकर्णी का कहना था कि ये भारतीय सकाफत, जमहूरियत और आइन की मुखालफत है। खुर्शीद कसूरी ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इससे तकलीफ हुई। उनका कहना था कि एहतजाज का हक सभी को हासिल है, लेकिन ये पुरअमन तरीके से होना चाहिए। शिवसेना ने हाल ही में पाकिस्तानी गुलूकार गुलाम अली के भारत में होने वाले कॉन्सर्ट की भी मुखालफत की थी।
हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में FM रेडियो को एक सनत का दर्जा देने पर गौर कर रही है ताकि इसकी तरक्की मुमकिन हो सके। ये बात पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा के चेयरमैन कमालुद्दीन टीपू ने कही है। वो BBC के इश्तराक से इस्लामाबाद में FM रेडियो के मुस्तकबिल के बारे में एक रोज़ा सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर जनरल मुर्तज़ा सोलंगी ने अपने खिताब में रेडियो के निजी शोबे को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा,
स्टेट ब्रॉडकास्टर है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके अंदर कोई इस तरह की स्ट्रक्चरल इस्लाहात लाई जाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिपेंडेंट हो जिस तरह से BBC है, और वो मार्केट से किसी किस्म के इश्तहार ना ले ताकि वो जो फाइनेंसेस हैं वो डाइवर्ट हो सकें कमर्शियल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी तरफ। वो तो नहीं हुआ। इसमें एक जो नया इजाफा है वो ISPR के रेडियो स्टेशन हैं, लेकिन ये जो नया नेटवर्क है वो बगैर किसी ओवरसाइट के है। एक हाथी है कमरे में जो सबको नजर आता है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए कि उसका नाम हाथी है।
कराची में एक हमले में जमात अहमदिया के 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। कराची से रियाज सुहेल।
गुलशन इकबाल पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता शब अहमदी जमात के लोग इबादत के बाद वापस घर जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 55 साल सलीम रफाकत और उनका 17 साल भांजा शामिर जख्मी हो गए। पुलिस का दावा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद ने छीना झपटी की कोशिश की और मजामत पर फायरिंग कर दी, ताहम हमलावर कोई छीनने में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जानब अहमदिया जमात के तर्जमान ने पुलिस के मौकिफ को मुस्तरद किया है। तर्जमान के मुताबिक कौमी एक्शन प्लान में जमात अहमदिया के खिलाफ नफरत अंगेज लिटरेचर पर पाबंदी का फैसला किया गया था, लेकिन ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है।
तुर्की के वजीर आजम अहमद दाऊद ओगलो का कहना है कि हुक्काम अमन रैली पर होने वाले हमले में मुलविस 2 अफराद की जल्द शनाख्त कर लेंगे। तुर्की के सरकारी टीवी चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तफ्तीशकारों को DNA टेस्ट के नतायज का इंतजार है। तफसील बताएंगे जीशान हैदर।
तुर्की के वजीर आजम ने तस्दीक की है कि अमन रैली पर होने वाले हमले में दौलत इस्लामिया मुलविस है। इस रैली को कुर्द नवाज पार्टी HDP ने मुनक्किद किया था। हमले में हलाक होने वालों की तादाद के बारे में HDP का कहना है कि 128 अफराद मारे गए हैं, ताहम हुकूमती आदाद के मुताबिक 96 अफराद हलाक हुए हैं। अमन रैली में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात में अंकरा के हजारों शहरियों ने शिरकत की है। नामा निगारों के मुताबिक तुर्की में इस हमले के बाद हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और तनाव की कैफियत पैदा हो गई है। हुकूमत ने इस वाक़े के बाद मुल्क में 3 रोज़ा का ऐलान किया था।
अफगानिस्तान में आजकल सियासतदानों के लिए फेसबुक का एक सफा मुश्किल का बायस है। इसका नाम काबुल टैक्सी है, मगर इसमें ऐसा क्या है जो सियासतदानों को तंग कर रहा है, बताएंगी सबानाज।
काबुल टैक्सी ने इस वर्ष के अवाइल में अपनी सर्विसेज शुरू की थी और फेसबुक पर इसे 60,000 से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है। ये सफा सियासत के मौजू पर अफसानवी कहानियों पर मबनी है। एक टैक्सी ड्राइवर काबुल की गलियों में टैक्सी चलाता है और अक्सर बासर शख्सियात को अपनी गाड़ी में लाता ले जाता है, और ऐसी ही बासर शख्सियात से वो जो बातें सुनता है उन्हें इस सफे पर शाया कर देता है। इस सफे पर मुल्क के सभी सियासतदानों बशमूल सदर अशरफ गनी और उनके साथी अब्दुल्ला तक को भी निशाना बनाया जा चुका है। इस सफे को चलाने वाले शख्स की शनाख्त फिलहाल हुक्काम और मीडिया दोनों के लिए मुअम्मा बनी हुई है।
खबरें अभी जारी हैं, ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारा हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
कौमी असम्बली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया गया है और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
ये BBC उर्दू सर्विस है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम में रूसी फौजी ऑपरेशन का दिफा करते हुए कहा है कि उसका मकसद सदर बशार अल असद की जायज हुकूमत को मुस्तहकम करना है। तफसील बताएंगे जफर सैयद।
मास्को में एक TV चैनल से बात करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि शाम में फजाई कार्रवाई का एक और मकसद वहां सियासी हल के लिए माहौल साजगार बनाना है। उन्होंने इस बात को रद्द किया कि रूस शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के बजाय मोतदिल तंजीमों को निशाना बना रहा है। सदर पुतिन ने कहा कि सदर बशार अल असद के लिए रूस की हिमायत के बगैर खतरा है कि शाम में दहशतगर्द तंजीमों का कब्जा हो जाएगा। उनका कहना था कि इस वक्त बशार अल असद की हुकूमत पर सख्त दबाव है और अस्करियत पसंद दमिश्क के बिल्कुल करीब है। सदर पुतिन ने दीगर मुल्कों से भी कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ इन कोशिशों में मुत्तहिद हों।
चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि मुल्क की सबसे बड़ी तेल बनाने वाली कंपनी पेट्रो चाइना के साबिक चेयरमैन को अदालत ने बदनवानी के इल्जाम में 16 साल कैद की सजा सुना दी है। जियांग जी मिन को 2 साल पहले हिरासत में लिया गया था। मुबसरीन का कहना है कि वो चीन की कौमी सलामती के साबिक सरबराह के करीबी साथी भी थे। चीन के सदर मुल्क में बदनवानी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की सरबराही कर रहे हैं। बरतानिया में आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि उन्होंने 600 साल पहले किंग हेनरी पंजम के बनाए गए एक जंगी बहरी जहाज के बाकियात को दरियाफ्त किया है। माहिरीन कहते हैं कि इस बहरी जहाज का मलबा जनूबी बरतानिया में एक इलाके में मट्टी और कीचड़ के तले दबा था। माहिरीन के मुताबिक ये जहाज होली गोस्ट के 4 जहाजों के दस्ते में से एक था जिसने फ्रांस के खिलाफ एक मौसर जंग में हिस्सा लिया था। और अब खेलों की खबरें अब्दुल्ला फारूकी से।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में शायद दोनों टीमों को बॉलर्स की कमी का सामना करना पड़े। पाकिस्तानी बॉलर यासिर शाह आज प्रैक्टिस के दौरान बॉलिंग करते हुए कमर में झटका आ जाने की वजह से बड़ी मुश्किल से ड्रेसिंग रूम तक गए जहां फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें ट्रीट किया। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर्स का कहना है कि उनके पास कल के मैच के लिए यासिर शाह का कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं, इसलिए शायद पाकिस्तान से किसी बॉलर को बुलवाना पड़े। उधर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर स्टीवन फिन भी पहले टेस्ट मैच में शिरकत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बाएं पांव में प्रैक्टिस के दौरान तकलीफ हो गई थी। इंग्लैंड के कप्तान कहते हैं कि ये उनके और उनकी टीम दोनों के लिए डिसअपॉइंटिंग है।
You know, as I say, if you saw the warm-up game, it was probably the most impressive of our seamers in both those days. So, yeah, disappointing for him, and also disappointing for us.
इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के आगाज से कबल जारी होने वाली बैन अलाक्वामी टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक जो टीम ये सीरीज जीतेगी वो ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 की पोजीशन पर आ जाएगी। इस वक्त ICC की टेस्ट रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका 125 पॉइंट्स के साथ अव्वल नंबर पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया 106 पॉइंट्स के साथ दूसरे और इंग्लैंड पाकिस्तान से 1 पॉइंट के फर्क से तीसरे नंबर पर है। टेनिस में बरतानिया की नंबर 1 खातून प्लेयर योहाना कोंटा चेक रिपब्लिक की क्लारा कोकलोवा से WTA के एक मैच में 3 सेट से शिकस्त खा गई हैं। ये विंबलडन के बाद गुज़िश्ता 26 मैचों के दौरान कोंटा की तीसरी शिकस्त है और अपने से नीचे की रैंकिंग के किसी भी प्लेयर से पहली शिकस्त। स्पेन के डैनी पेड्रोसा ने जापानीज MotoGP में फतह हासिल करके अपने करियर की 50वीं ग्रांड प्री अपने हरीफ और चैंपियनशिप लीडर वैलेंटिनो रोसी को हराकर अपने नाम कर ली है। एक वक्त ऐसा आया जब पेड्रोसा अपने हाथ की इंजरी की वजह से ये खेल छोड़ने वाले थे कि लगातार 7 लैप्स में उन्हें लीड मिल गई और आखिर में उन्होंने ये फतह हासिल कर ली।
और अब महकमे मौसमियात के डॉक्टर मोहम्मद हनीफ बताएंगे पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा।
कल दिन के वक्त भी पाकिस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में मतला साफ होगा। कल पंजाब सिंध बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में धूप की शिद्दत तेज़ होगी। 2 रोज़ के बाद बलूचिस्तान में, 3 रोज़ के बाद KPK बालाई पंजाब कश्मीर के बाद इलाकों में बारिश होगी, लेकिन अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद पंजाब KPK सिंध बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन कल शाम या कल रात कुहाट हंगू अटक के बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं या आंधी के साथ बारिश होने की तवक्को है, जबकि शुमाली इलाका जात में कल भी मतला साफ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।